मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 5 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो बहुत ही मजेदार विषय है और सच पूछिए तो जो फोर्थ पेपर है उसमें जितने भी टॉपिक हैं उन सब में यदि मुझे कोई टॉपिक सबसे अधिक प्रिय है, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है, या यूं कह लीजिए मेरे सबसे ज्यादा अनुकूल है, तो वह यही टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे भावनात्मक समझ भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट सच पूछे तो मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है और दूसरी बातें वो नहीं मालूम थी। मैं जब किताब लिख रहा था सदा सफल हनुमान, आपने इस किताब के बारे में कई बार सुना भी होगा शायद मेरे डेली ऑडियो लेक्चर में, या लाइफ मैनेजमेंट में तो जरूर एक दो बार सुना होगा, तो उसमें मैंने हनुमान जी के जो निर्णय लेने की जो ताकत थी या निर्णय लेने का जो उनका ढंग था उसमें मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को देखा था। हालांकि मैंने उस समय इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, तो मैं देखता था कि वो तर्क का भी सहारा लेते हैं और इमोशंस का भी सहारा लेते हैं। तो बकायदे मैंने फिर उसकी चर्चा की वहां, इसलिए मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। और सच पूछे तो यूं कह लीजिए कि कुछ जाने अनजाने में ये मेरे अपने जीवन की प्रणाली भी रही है, चाहे सिविल सर्वेंट के रूप में रही हो या मेरी पर्सनल लाइफ के रूप में भी रही हो। दोस्तों, इसीलिए यह विषय मेरे लिए बहुत प्रिय विषय है और चूंकि आप भी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो दोनों ही दृष्टि से आपके लिए भी प्रिय होना चाहिए। एक तो आप बन जाएं इसलिए आपके लिए प्रिय होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में हमेशा एक न एक सब प्रश्न इस पर पूछा ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप बन जाएंगे सिविल सर्वेंट तो फिर आपकी फिर कुछ और बनने की कोशिश होगी, और वो क्या बनने की कोशिश होगी? एक अच्छा सिविल सर्वेंट। तो अच्छा सिविल सर्वेंट बिना इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लिए आप नहीं बन सकेंगे, तो वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, जब आप बन जाएंगे तब तो ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और ये सब क्या चीजें होती हैं, लेकिन अभी तो आपके सामने जो चैलेंज है वो यही है कि किसी तरह से आप बन जाएं, तो मैं अपनी बात को वहीं तक सीमित रखना चाहूंगा। दोस्तों, इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके दो अलग अलग पार्ट हैं। जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कभी कभी वो थ्योरेटिकल पार्ट में क्लियरली पूछ लिया जाता है और कभी कभी ये प्रच्छन्न रूप से भी होता है, मतलब छिपा हुआ होता है, आपको उसे पकड़ना पड़ता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है केस स्टडीज का। आप देखेंगे कि केस स्टडीज में जो मामले दिए जाते हैं, आप किसी भी केस स्टडी को उठा करके देख लीजिए, तो उसमें दो चीजें आपको फंसाती हैं। नंबर एक, कानून कुछ कहता है, और नंबर दो, आवश्यकता कुछ चीज की है। मतलब कानून के हिसाब से वो चीज आसानी से नहीं हो सकती, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, इसका तो ये काम बहुत जायज है, बहुत सही है और इसे किया जाना चाहिए, लेकिन कानून अलाउ नहीं कर रहा है, तो अब आप उसको कैसे करेंगे? तो देखिए, जो कानून से काम करते हैं वो बुद्धि से काम कर रहे हैं, उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस जो कानून कह रहा है, लकीर के फकीर जिसको कहते हैं, आप कर दीजिए। लेकिन आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, और खासकर एक लोक कल्याणकारी राज्य में तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। कानून का तो कोई भी लागू कर सकता है, फिर वीकर सेक्शन के प्रति आपसे विशेष संवेदना की उम्मीद की जाती है, और जो आपके पास जो मामला आया है वो वीकर सेक्शन का मामला है, तब आप क्या करेंगे? कानून लागू कर देंगे, फिर क्या करेंगे? तो वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? संवेदना की जरूरत पड़ेगी, इमोशंस की जरूरत पड़ेगी। तो और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो सच पूछे तो जो केस स्टडी वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता पैदा हो जाती है। याद रखिए, मत सोचिएगा कि ये तो बस यहां फर्स्ट पार्ट के लिए पार्ट ए में ही आपके पूछा गया है, बस बिना इसको जाने आप केस स्टडीज सही तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने कहा कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सीधे सीधे, दूसरा प्रच्छन्न तरीके से। तो देखिए, सीधे सीधे जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको एक नमूना पढ़ करके सुना देता हूं। ये 2017 का प्रश्न है, उसमें सीधे सीधे कहा गया कि प्रशासनिक पद्धतियों में आप प्रशासन ही करने जा रहे हैं, प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि का आप किस तरह प्रयोग करेंगे, 150 शब्दों में लिखिए 10 नंबर का। हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, सीधी सी बात है। और आप अपना सिलेबस भी देखेंगे ना, तो सिलेबस में भी सीधे सीधे ये दिया गया है कि भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं दिया हुआ है, प्रशासन तथा शासन में, राइट। इसके बाद अब आपको मैं एक प्रश्न सुना रहा हूं जो थोड़ा सा टिकलिस है, ये 2018 का है। इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है। 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं खासकर फोर्थ पेपर में, वो कुछ इसी नेचर के हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, इनडायरेक्ट तरीके से आपको ढूंढना पड़ता है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिएगा, है ना। अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है, अनुमत यानी अनुमति होती है, वो सही होता है कहने का मतलब। अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। ये कोर्ट में है। एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए, 150 शब्द और 10 नंबर है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। इन डूइंग ए गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली आर बाय क्लियर इम्प्लीकेशंस। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन उस अच्छा काम को करने की न तो आपको सीधे सीधे अनुमति दी गई है कि आप ऐसा करें ही, मतलब आदेश दिया गया है, और न ही इस बात को रोका गया है कि नहीं आप इस काम को नहीं कर सकते, यानी कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको एक अच्छा काम करना है। बस आपको इसे उदाहरणों के जरिए समझाना है और आप एक लोक सेवक हैं। तो अब आप देखिए कि अच्छा काम आपको करना है और आपको रोका भी नहीं गया है, तो आपको नहीं लगता कि यहां आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस और इमोशंस दोनों को मिला करके, कि भी अच्छा काम हो इमोशंस से जुड़ा हुआ है और आप कैसे बेहतर तरीके से करेंगे, वो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको अब सीधे सीधे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं लिखना है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि उसके बारे में लिखना है, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे 150 शब्दों में तो वो तत्व तो इसमें शामिल हो जाएगा, राइट। अब फिर आप लिखेंगे कि ये वीकर सेक्शन से संबंधित है, लोक कल्याणकारी हमारा राज्य है तो उसमें किया जाना चाहिए, और एक सिविल सर्वेंट एक सर्वेंट होता है। अब आप अपने उत्तर को जिस तरीके से भी ढालेंगे, उसका जो स्वरूप निर्धारित करेंगे वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आप यहां इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट को शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए अब मैं थोड़ा सा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बता दूं, आधा वक्त तो इस भूमिका में चला गया है जो बहुत जरूरी भी था। देखिए बेसिकली क्या है कि पहले जो प्रशासन रहा, जो राजाओं महाराजाओं का प्रशासन था, तो वो कोई लोक कल्याणकारी प्रशासन तो होता नहीं था, राजतंत्र था, तो लोग अपने मन से कानून बनाते थे, जो राजा अगर राजा अच्छा है तो थोड़ा सा कल्याण हो जाता था, नहीं अच्छा है तो ठीक है जैसा है, और ये सभी दुनिया में पूरी दुनिया में था। इसके बाद देश आजाद होने लगे, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आने के बाद लोक कल्याण की अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई कि भाई लोगों का शासन है तो लोगों के लिए है तो उनका कल्याण किया जाना चाहिए। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरह के विचार देखेंगे धीरे धीरे आने लगे, जो उद्योग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए थे, और जनता के लिए भी आने लगे जो किसी स्टेट के सिटीजन्स होते थे, राइट। तो धीरे धीरे ये विचार आने लगा और उद्योग के क्षेत्र में एक तरह से मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी होने लगे कि नहीं, जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, ये नहीं कि आप उनको सुविधाएं दे दें, उनको मशीन दे दें, उनके मनोविज्ञान को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे तो हम इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते, इनकी क्षमताओं को नहीं बढ़ा सकते। तो वो थिंकिंग शुरू हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। उसमें आपको एक नाम पढ़ने को मिलेगा जो मनोवैज्ञानिक ही रहे लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर माने जाते हैं, अब्राहम मैस्लो। ये मुझे बहुत प्रिय है और मैंने इनको खूब पढ़ा, अब्राहम मैस्लो, है ना। उन्होंने फिर खासकर कि मनुष्य का जो मनोविज्ञान होता है वो उसकी क्षमता से कैसे सीधे जुड़ा हुआ होता है, इस पर बहुत जोर दिया, और उन्होंने बताया कि एक ही मनुष्य जब अपने जीवन के आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी प्रायोरिटीज भी उसके मनोविज्ञान के हिसाब से बदलती चली जाती है, वो हर समय एक ही तरीके से चीजें नहीं सोचता है, एक ही तरीके से चीजें नहीं पाना चाहता है। तो उन्होंने 5 चरण बताए थे, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो उसके बाद से ये लगा कि नहीं, मनुष्य को आप सीधे डंडे से नहीं हाँक सकते, कि आप आदेश दे दीजिए और रूल्स लागू कर दीजिए तो उसका कल्याण भी हो जाएगा, लॉ ऑर्डर बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब हमारा संविधान आया तो आप देख रहे हैं उसमें सीधे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही रखी गई है। तो इसी के आसपास 1960-70 के आसपास ये विचार जोर पकड़ने लगा। इसके बाद मित्रों एक आए हार्वर्ड गार्डनर, चाहे तो आप ये नाम नोट कर सकते हैं, उन्होंने बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया, बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहां से चीजों की शुरुआत हुई। उसमें उन्होंने दो बातें बीच में डाली थी इस बुद्धिमत्ता में, 8 चीजें उन्होंने बताई बहुल बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के तहत। तो उन्होंने दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, मैं आगे जाकर के उसकी चर्चा करूंगा, तो यहां मैं समय को देखते हुए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो यहां से धीरे धीरे बातचीत होनी शुरू हुई, थोड़े प्रशासन का चरित्र बदलना शुरू हुआ। लेकिन 1995 में फिर एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता है मनोविज्ञान के क्षेत्र के, डेनियल गोलमैन की एक किताब आई, और वो उस किताब का नाम था, बहुत पॉपुलर हुई ये किताब, उस किताब का नाम था देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, नाम ही है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि बौद्धिक समझ आप कह लीजिए, बुद्धिमत्ता पूर्ण समझ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कह लीजिए, क्यों यह आईक्यू से ज्यादा वजनी है, क्यों यह आईक्यू से ज्यादा मायने रखता है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपको मालूम है, आईक्यू से ज्यादा जरूरी यह है। और बाद में फिर यह कहा जाने लगा कि जिंदगी में जो हमें सफलताएं मिलती हैं या हम दूसरों से जो काम करा पाते हैं वो केवल बुद्धिमत्ता के जरिए 20% होता है, इमोशंस के जरिए 80%, मतलब 80% जो सफलता मिलती है वो भावना से मिलती है, बुद्धि का रोल तो सिर्फ 20% है। और फिर यह सिद्धांत स्थापित होने लगा। भारत में भी जो शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश लिगेसी को लेकर के चल रहे थे। ब्रिटिश शासन में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो ब्रिटिश सत्ता के सर्वेंट थे, उन्हें भारतीय जनता से कोई लेना देना रहता नहीं था, वो आदेश का पालन करते थे और डंडे के दम पर अपना प्रशासन चलाते थे। कुछ लोग ठीक है उसमें संवेदनशील भी थे, वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतया प्रशासन का ये चरित्र था। बाद में धीरे 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 जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थ्योरी आने लगी तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा कि नहीं नहीं आप केवल बुद्धि से प्रशासन नहीं कर सकते, सीधी सी बात है कि आपको इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों जब हम कहते हैं इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब दोनों को मिलाना पड़ेगा, इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस, बुद्धि भी चाहिए, बौद्धिकता भी चाहिए, लेकिन इमोशंस भी चाहिए। पहले चीजें सिर्फ बुद्धिमत्ता पर आधारित थी, राइट। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का फिर मतलब क्या होता है, ये एक तरफा नहीं है कि आप इन दोनों को मिला देंगे, है ना। मैं जरा सा जल्दी मैं आपको बताऊंगा लेकिन बहुत आसान सा ही है, मुझे सुनने के बाद जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और आपको चाहिए कि आप एक दो दिन में जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ लें तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बकायदे कुछ पॉइंट्स दिए गए और गोलमैन ने ही अपने पॉइंट्स दिए कि आप क्या है बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस और उससे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली बात तो कहा कि सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में जानना चाहिए कि आपके इमोशंस किस तरीके के हैं। ऐसा नहीं कि बस आप मान ले रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, आप उनका निरीक्षण कीजिए, आप देखिए, और इमोशन से ही संबंधित आपका व्यक्तित्व है। आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जानिए कि कहां आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कहां इमोशनल नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो मनोभाव होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं, बहुत ही उनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने नोट दिखा दिया और पता लगा कि हम प्रलोभन में आ गए, प्रलोभन भी तो एक इमोशन ही है ना, लालच में फंस गए और बाद में पता लगा कि हम सच में फंस गए। तो आप अपने इमोशंस को समझिए। इसके बाद फिर उन्होंने पॉइंट दिया कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने इमोशंस को समझने के बाद उनमें डिसिप्लिन लाइए, उनको मैनेज कीजिए, उनका प्रबंधन कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कहां गुस्सा होना चाहिए, यानी कि हर जगह आप आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए, तो सब जगह गुस्से ही गुस्सा हो रहे हैं। कहां गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए तो कितना गुस्सा होना चाहिए, कहां प्रेम से बात करना चाहिए, कहां किसी को सस्पेंड कर देना चाहिए, कहां किसी को डांट करके केवल हटा देना चाहिए। तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे मान लीजिए, चलिए हम व्यक्तिगत तौर पर ही देखें, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, उसे कोई चीज हाथ से गिरी और टूट गई। अब आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने झापड़ लगा दिया। अक्सर यही हम करते हैं, अरे भैया बच्चे की टूट गई, थोड़ा सा हल्के से डांट दीजिए और इसके बाद खत्म कर दीजिए बात को। लेकिन आपने इतना मार दिया कि पता लगा उसका ही हाथ पैर टूट गया। तो ये सेल्फ रेगुलेशन नहीं हुआ। तो हमें अपने जो इमोशंस हैं, हर तरह के इमोशंस, उनको रेगुलेट करना चाहिए और फिर अपने इमोशंस का इस्तेमाल हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी करना चाहिए। आप कोई भी काम करिए, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में निराशा आती है, बहुत ज्यादा निराशा आती है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के और वहां जिस तरह की जरूरतें हैं उनको हासिल करने की कोशिश कीजिए। म्यूजिक सुन लीजिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छे लोगों से बातचीत करने लगिए, घर वालों से बातचीत करिए, तो इससे आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी, थकान खत्म हो जाएगी और फिर से एक तरीके से आपको ताकत मिलेगी। तो ये आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। फिर यह है कि आपको दूसरों के साथ एम्पैथी, समानुभूति, समानुभूति आपके सिलेबस में है, दूसरों के प्रति समानुभूति का भाव रखना चाहिए, यानी कि दूसरे की भावनाओं को भी जान सके। ये तो देखिए फर्स्ट पार्ट हुआ जहां आप अपनी भावनाओं को जानते हैं। अगर आप उस तरह से आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डिवाइड करें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक अपनी भावनाओं को समझना और रेगुलेट करना, और फिर दूसरा है दूसरे की भावनाओं को समझना और उसके साथ फिर अपने भावनाओं को अच्छे तरीके से जोड़ना। गाना सुना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, अब वो मुस्कुरा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि यार ये खुश है, लेकिन सच में वो खुश नहीं है। क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, लेकिन वो सच में गमगीन है, उसको दुख है। तो आप उसका चेहरा देख करके समझिए। एक और गाना है ना कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो चेहरे पर भी लिखा होता है, जो इमोशंस का जो लेख है वो चेहरे पर होगा। तो आप सही तरीके से पकड़ने की कोशिश कीजिए, यानी कि अपने दुश्मन, अपने मित्र, इन सब की बहुत अच्छी पहचान होनी चाहिए। कोई आकर के आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है तो ये मत मान करके चलिए कि सही में ये दया करुणा का पात्र है। उसको अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश करने के बाद फिर आप उसके साथ उस तरीके का व्यवहार कीजिए। तो जब आप इस तरीके से इमोशंस में और बुद्धिमत्ता में एक सामंजस्य बैठा लेते हैं, तो याद रखिए कि न केवल आप एक अच्छे प्रशासक ही होते हैं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सफल होते हैं, क्योंकि तब जो आपके निर्णय होंगे वो बहुत एप्रोप्रिएट निर्णय होंगे, बहुत ही सही निर्णय होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ मूलभूत बातें आपको बताई हैं। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज इस टॉपिक को आप डेफिनेटली मेरे इस ऑडियो लेक्चर को सुनने के बाद समय निकालकर जरूर पढ़ लें, और अगर आज किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं तो कल तक तो जरूर पढ़ लें। आपको मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि आगे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सफल होने के लिए उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।